Is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. Globally, there are more than 160,000 deaths from COVID-19 and 2.3 million confirmed cases. In the United States, the death toll is more than 39,000, and the number of infections is approximately 740,000. A laboratory in the Chinese city at ground zero of the coronavirus outbreak, Wuhan, rejects U.S. theories that it spawned the pandemic. The denial came as world governments were debating how and when to ease lockdowns that have kept more than half of the planet, 4.5 billion people, confined to their homes and crippled the global economy. In Africa, lockdowns to slow the spread of the virus may be having an unintended effect, choking the continent's already vulnerable food supply. Fear meets fortitude in a Peru hospital hard hit by COVID-19. Britain's senior minister said it was too early to consider easing restrictions given the worrying number of coronavirus deaths. The British government extended its lockdown from March 23rd to the end of April. The United States of Texas and Vermont will allow certain businesses to open Monday. In Florida, people are returning to a few beaches and parks. Montana will begin some reopening Friday. All of this, even as new hotspots emerge, and experts warn moving too fast could prove disastrous. Adding to the pressure are protests against stay-at-home orders organized by small government groups and President Trump supporters. They staged demonstrations Saturday in several cities after the president urged them to, quote, liberate, end quote, three states led by Democratic governors. For the latest on COVID-19 and other news of the day, visit us at voanews.com or download our app. From Washington, this is VOA News. Italy's prime minister told German media Sunday the full firepower of the European Union will be needed to overcome the historic shock of the coronavirus. He repeated calls to pool European debt and reiterated demands for the controversial pooled debt instruments called corona bonds. He insists opposition to them from the Netherlands and Germany has to change. There will be a video conference between EU leaders Thursday. Orthodox Christians, the world's third largest group of Christian believers, celebrate Easter 1 week after their Catholic and Protestant counterparts because they follow a different calendar. Many of the more than 260 million of them celebrated at home, watching services online or on TV, while a few braved curfews and other restrictions to worship in person. Senior World Health Organization officials say there is no evidence people who have survived a bout of coronavirus become immune from the deadly disease and cannot pass the infection on to others. Anxious governments increasingly are pinning their hopes on serologic tests that look for antibodies in a person's immune system to clarify the number of people who have been exposed to the virus. They argue knowing this would allow them to send these people back into the workforce without risk of their getting infected or infecting others. But the head of the WHO's Emerging Diseases and Zoonosis Unit says these tests may not be able to provide the information governments are seeking, that while they do measure the level of antibodies, that doesn't mean somebody with them is immune to the disease. The executive director of WHO's Health Emergencies says a lot of work still needs to be done to standardize the tests and make sure they're validated. The English Premier League said Sunday Brighton's Amex Stadium is the latest British sports venue to become a coronavirus testing center. The site should reach capacity of up to 1,000 tests a day within a few days. Results should be available within 48 hours. The Tottenham Hotspur Stadium and Twickenham, the home of English rugby, have also been converted into drive-through testing facilities for the thousands more National Health Service staff and other key workers. Iran's Revolutionary Guards said Sunday the United States gave a Hollywood account of an encounter between the two states' navies in the Gulf. This after Washington said Tehran's vessels had harassed its ships. The U.S. Department of Defense accused Tehran of dangerous and provocative actions Wednesday. For its part, the Islamic Revolutionary Guard Corps claims the U.S. Navy had presented an incorrect agenda-fueled narrative of the encounter. Vietnam protested Sunday at China's move to establish two administrative units on islands in the disputed South China Sea, saying it seriously violated Vietnam's sovereignty. Via remote, Diane
अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से कोरोना के बारे में खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बुहरान से निपटने के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटियां इनफरादी तौर पर और यूनिवर्सिटियों के कंसोर्शियम्स के जरिए कोरोना से निपटने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ वेंटिलेटर्स पर काम कर रही हैं, कुछ सैनिटाइजेशन किट्स पर काम कर रही हैं, कुछ मास्क पर काम कर रही हैं और कुछ जो ऑलरेडी अवेलेबल दवाएं हैं उनमें से कोई ऐसी दवा तलाश करने में मसरूफ हैं जो कोरोना के इलाज के लिए किसी हतमी दवा के तौर पर फौरी तौर पर सामने आ सके। ऐसी यूनिवर्सिटियों का एक कंसोर्शियम है जो कोरोना के लिए किसी हतमी दवा की तलाश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहा है। उसके एक रुकन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर और जिन्ना अस्पताल लाहौर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमान खान। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद जमान खान साहब,
वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर जमान साहब, कुछ बताइए कि आपका ये कौन सा कंसोर्शियम है यूनिवर्सिटीज का और वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए आप वो दवाएं तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जो कि कोरोना के इलाज के लिए बहुत ज्यादा कारामद हो सके और फौरी तौर पर दस्तियाब भी हो सके।
बहुत शुक्रिया। ये हमारा एक कंसोर्शियम है जिसको मोलेकुलर बायोलॉजी कंसोर्शियम कहते हैं और इसका हिस्सा तीन बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। और इन ये मोलेकुलर बायोलॉजी कंसोर्शियम के एक हिस्से के तौर पे मैं भी इससे मुंसलिक हूँ। और जब ये कोरोना की वबा आई तो उसके बाद हमने ये सोचा कि जाहिर है इसका अभी तक कोई मौसर इलाज मौजूद नहीं और वैक्सीन भी मौजूद नहीं, तो कोई ऐसी दवा ढूंढी जाए जिसके खिलाफ मौसर हो सके। होता यह है तहकीक के मुताबिक कि जब कोई नया कंपाउंड बनाया जाता है तो उसको डिजाइन करने से लेकर उसको आम लोगों के इस्तेमाल में आने तक इसमें कुछ 10 साल लग जाते हैं और इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इस पे खर्चा आता है। तो उसमें एक इस तरह की सिचुएशन में हम इतना इंतजार नहीं कर सके जब तक ये एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो उसमें जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो दवाएं जो पहले से मौजूद हैं और FDA जैसे इदारे की तरफ से वो किसी क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए अप्रूव हो चुकी हैं, हम उन दवाओं में से ये देखने की कोशिश करें कि क्या कोई ऐसी दवा है जो कि इस वायरस के खिलाफ भी मौसर हो सकती है। तो उसको ढूंढने के मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें से अब जो बहुत एडवांस और नया तरीका है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक किस्म है जिसको डीप लर्निंग कहते हैं। तो हमने उसको इस्तेमाल करते हुए कोई FDA की 2440 के करीब FDA अप्रूव ड्रग्स थी उनको लिया और हमारी इस रिसर्च के अंदर एक ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है जिसमें क्लिनिशियन भी हैं, जिसमें मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट भी हैं और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लोग भी हैं और कंप्यूटर साइंसेस के लोग भी हैं। तो हमारे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और ये रिसर्चर्स हैं जो कि जर्मनी के अंदर पाकिस्तानी लोग हैं जो कि जर्मनी में हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में। तो उन्होंने एक इस मकसद के लिए मैंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल तैयार किया जो कि ये बता सकता है कि ये दवाई किसी प्रोटीन के साथ कितने अच्छे तरीके से बाइंड करेगी। और फिर उसके लिए हमने ये किया कि आपको पता है कि फरवरी के अंदर ये जो कोरोना वायरस है इसका सारा स्ट्रक्चर जो है, जीनोम का स्ट्रक्चर जो है वो पब्लिश हो गया। तो फिर हमने उसको इस्तेमाल करते हुए कोरोना वायरस की कोई जो 24 के करीब अहम प्रोटीन्स हैं उनको लिया और ये 2400 से ज्यादा ड्रग्स को लेके तो फिर हमने ये देखने की कोशिश की कि कौन सी दवा जो है वो इस वायरस की किस प्रोटीन के साथ कितना अच्छे तरीके से मैच करती है। तो उसके नतीजे में हमने कोई 150 के करीब दवाइयां पहले आइडेंटिफाई कर ली। फिर हमने इसको मजीद देखने के लिए एक और जिसको हम वर्चुअल स्क्रीनिंग कहते हैं या टॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स जो साइंटिस्ट हैं वो समझते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि हम उस प्रोटीन के लेवल पे जाकर देखते हैं कि ये दवाई वहां पे कितने अच्छे तरीके से जाकर लगेगी। तो बहरहाल उसके नतीजे में भी हमने जब उसको मजीद देखा तो उनमें से जो सबसे अच्छी दवाएं थी जो कि सबसे अच्छे तरीके से जाकर वहां पे लग रही थी, हमने उनको आइडेंटिफाई किया। और ये कोई 8 के करीब दवाएं हैं जिनमें कुछ एंटीवायरल हैं जो कि पहले से हेपेटाइटिस सी के इलाज में इस्तेमाल हो रही हैं, एक आध एंटीबायोटिक है, एक एंटीफंगल है। और ये जो रिजल्ट्स हैं हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन के अंदर हम इसको एक प्री प्रिंट सर्वर जो बायो आर्काइव वगैरह है उन पे रख देंगे, ताकि जितनी हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसको देख सके। हम इस पे मजीद तजुर्बात में भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम ये रिजल्ट्स पहले वहां पे रख देंगे। और जो मजीद तजुर्बात करना चाहते हैं उसके अंदर हम उनको कहते हैं इन विट्रो रिजल्ट्स या वेट लैब एक्सपेरिमेंट्स, जो कि हम लैब के अंदर तजुर्बात करेंगे। और उसके लिए हमने फंडिंग के लिए हायर एजुकेशन कमीशन को अप्लाई किया हुआ है। आई थिंक कि जल्दी उसके नतायज भी आ जाएंगे।
असल में तो बात यह है कि ये फौरी तौर पर ये दवाएं मार्केट में आ जाएं, लोगों के इस्तेमाल में आ जाएं। उसके लिए आपने इंटरव्यू से पहले बताया था कि आपने वो दवाएं ली हैं जो FDA से मंजूर शुदा हैं, तो उसकी वजूहात हमारे सुनने वालों को बताइए कि आपने इन दवाओं का इंतखाब क्यों किया और उन दवाओं का इंतखाब क्यों नहीं किया जो कि वैसे ही नई थी या कुछ किसी और सिलसिले में वो सामने आई हुई थी।
इन दवाओं के इंतखाब की वजह ये है, सबसे पहली वजह तो ये है कि FDA अप्रूव्ड जो दवाएं हैं उनके साथ क्लिनिशियंस का साल साल का तजुर्बा है कि ये दवाएं महफूज हैं, और अगर ये एक मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं तो ये दूसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। दूसरी अहम वजह ये है कि जब कोई अगर कोई नई दवा ढूंढी जाती है तो उसको मार्केट के अंदर आने में और उसकी प्रोडक्शन के अंदर और फिर उसको दूसरे मुल्कों तक पहुंचाने में, जो कि आप देख सकते हैं कि ये किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है बल्कि एक आलमी वबा की शक्ल में है, तो हो सकता है उसमें कई कई सारे प्रॉब्लम्स आए। मिसाल के तौर पे आजकल जिस दवाई के ऊपर रेमडेसिविर है, एक एंटीवायरल है जिस पर ट्रायल हो रहा है, और अगर वो FDA से अप्रूव्ड हो जाती है तो भी उसे वक्त लगेगा पूरी दुनिया में बाकी ममालिक में जाने के लिए। तो इस सूरत में हम उन दवाओं का इंतखाब करते हैं जो कि पहले से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुस्तमिल हैं। मिसाल के तौर पे बहुत चंद एक दवाएं जो हमने ढूंढी हैं उनमें से ऐसी एंटीवायरल दवाएं हैं जो कि हेपेटाइटिस सी के इलाज के अंदर हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रही हैं। तो उसका फायदा ये होगा कि ये दवाएं अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये दवाएं इस वायरस के खिलाफ मौसर हैं, तो ये दवाएं फौरी तौर पर मुयस्सर भी होंगी ताकि उसका इस्तेमाल शुरू किया जा सके।
तो अब आपने कहा कि आपका ये जो रिसर्च प्रोसेस है कंप्यूटर के मरहले पर तो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से तो मुकम्मल हो चुका है, अब इसकी जो प्रैक्टिकल इसकी जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग होगी वो अब करेंगे आप अगले मरहले में। तो और
जी
अगर
बिल्कुल
वो मरहला कुछ इम्कान के कितने कितने अरसे पर मुहित होगा और कब तक ये मार्केट अवेलेबल हो सकेगी दवा अगर ये बन गई और कारामद हुई तो।
जी। सो उसके अंदर ये है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अगले 2 से 3 माह के अंदर इस मरहले को भी जो टेस्टिंग है उसको ये रिजल्ट्स भी हमारे पास आ जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। हमारी कोशिश तो ये होगी कि मई के एंड तक कि कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएं, लेकिन आपको पता है कि जो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें कुछ देर हो भी सकती है, मगर इसके बावजूद हम ये करेंगे जी कि हम इन चूंकि हम ये रिजल्ट्स उससे पहले पब्लिश करके ऑनलाइन रख देंगे, सो लोग उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और चूंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और दुनिया में कई ऐसी लेबोरेटरीज होंगी जो कि हमसे ज्यादा इक्विप्ड और फास्ट हैं, वो उससे फायदा उठा के ये एक ओपन चीज है कि कोई भी उससे फायदा उठा के उनकी लैब में एक्सपेरिमेंट अगर करें तो शायद ये रिजल्ट्स जल्दी भी मुयस्सर आ जाएं। सो अगर ये रिजल्ट्स पहले आ जाते हैं तो फिर इसका फायदा ये है FDA अप्रूव्ड ड्रग के इस्तेमाल का कि हम डायरेक्टली जिसे कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल में जा सकते हैं। सो उसको डायरेक्टली ह्यूमन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन दवाओं को।
तो ये आपको इसके क्या हुकूक किसको हासिल होंगे, कौन ये दवाओं को मार्केट में लाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा अगर ये दवा कोई बन जाती है या आप साबित कर देते हैं कि ये सही है तो।
जी उसमें इसे हम कहते हैं रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स। तो ये दवाई ऐसी नहीं होगी कि जो हमने एक नई दवा बनाई है, बल्कि जो पहले से मौजूद दवाएं हैं हमने ये साबित किया है तहकीक के जरिए से कि ये इस मकसद के लिए भी मुस्तामिल हैं। इनमें से कई दवाएं ऐसी हैं जो कि जिसे कहते हैं पेटेंट फ्री हैं, तो जाहिर है वो तो ओपन फ्रीली अवेलेबल होंगी, और अगर कोई ऐसी दवाएं हैं जो कि पेटेंट वाली हैं तो जाहिर है इस आलमी सूरत हाल में मुझे बहुत उम्मीद है कि वो कंपनियां भी इसमें जो है वो तआवुन करेंगी इसको करने के लिए। जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो बनाया है वो हमारा वो पेटेंट होगा। इस मॉडल का फायदा ये होगा कि ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले वक्त में भी अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वबा आती है या फौरी तौर पे किसी इस तरह के टेस्टिंग की जरूरत पेश होती है, तो ये जो मॉडल है जो कि कंप्यूटर के लेवल पे किया जा सकता है वो लोगों के लिए अवेलेबल होंगे।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद समान खान, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जी ये थे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर और जिन्ना अस्पताल लाहौर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमान खान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
और अब वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपको मालूमात पहुंचाते हैं जनूबी पंजाब में कोरोना बहरान के दौरान की सूरत हाल के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी मजलिस आमला के रुकन मोहम्मद अमीन अब्बासी बहावलपुर से। आप जियो न्यूज और द न्यूज अखबार के नुमाइंदे भी हैं। जी अमीन अब्बासी साहब, कुछ बताइए कि इस वक्त जनूबी पंजाब में जो कोरोना बहरान है उसके दौरान उमूमी क्या सूरत हाल है, लोगों को हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं खासतौर पर जो कोरोना से बचाव के लिए उनको चाहिए वो मिल रही हैं, और जो दूसरे इंतजाम हैं जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं उनके खुराक के या राशन के बंदोबस्त के लिए जो घरों में बंद हैं उनकी क्या हालात हैं, वो हमारे सुनने वालों तक पहुँचाइए।
जी ओवरऑल तो इस सूरत हाल को मैं ये कहूंगा कि कोई तसली बख्श नहीं है। बहावलपुर क्योंकि एक पुराना स्टेट रही है और इसका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 1906 से बहावलपुर बहावल विक्टोरिया अस्पताल के हवाले से, और अब एक नया हॉस्पिटल बना है सिविल हॉस्पिटल जो झांगीवाला रोड पर बनाया गया है, उसमें इंतजाम तो किसी हद तक किए गए हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जो है वो क्वारंटीन सेंटर भी बनाया गया है ताकि जो बाहर के मरीज आए या ज्यादा अगर कोई सूरत हाल खराब हो तो उनको लोगों को जो भी मरीज हो या जो भी अफराद हैं जिन पे शुबा है उनको वहां पे रखा जाए। ऐसा जो है वो डॉक्टर्स खसूसन जो है इन हॉस्पिटल्स के वो सेटिस्फाइड नहीं, उनको अभी तक जो है वो कोई प्रॉपर पीपीई जो उनका पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है वो नहीं मिल सका। उसके साथ साथ जो है उनके और भी बहुत से कंसर्न है, लोग जो है ना हॉस्पिटल्स में आते हैं बताते नहीं है, उनके पेरेंट्स जो है उनके जो लवाहिकीन है वो बताते तक नहीं है कि इनके कहीं ट्रेवलिंग हिस्ट्री है या किसी ये किसी जो है वो जायरीन से मिले हैं या किसी तबलीगी जमात वाले से मिले हैं या इन्होंने किसी पे विजिट किया है या उनसे मिल के आए हैं। फिर बाद में जब वो टेस्ट जाते हैं वो मुस्बत होते हैं तो उस पर जो है वो पूरे डॉक्टर जो है उनको एक जो है परेशानी का सामना है। इसी तरह देहातों में भी यही सूरत हाल है। अमूमी तौर पर जो है वो सूरत हाल को कोई मैं तसल्ली बख्श नहीं करार दे सकता। इंतजामिया अपने तौर पर कोशिशें कर रही है, टेस्ट किट्स नहीं है, कम लोगों के टेस्ट कम हो रहे हैं, जब टेस्ट ज्यादा होंगे तो पता चलेगा कि इलाके में क्या सूरत हाल है।
देहातों में क्या इस वक्त मंजर है?
देहातों में भी देखे लॉकडाउन है। देखिए हमारे जो इस जनूबी पंजाब की जो पॉपुलेशन है ना वो 60% जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका उनकी जो वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। आजकल हार्वेस्टिंग का सीजन पीक पे है गंदम का, लॉकडाउन की सूरत हाल है, लोगों में अभी तक ये भी अवेयरनेस नहीं है। मकामी इंतजामिया ने खसूसन देहातों में लोगों को ये नहीं जो है बाकायदा तौर पर जो है वो कोई एजुकेट किया कि सोशल डिस्टेंस किस तरह मेंटेन रखना है, किस तरह जो है वो फसल गंदम जो है कटाई है उसके दौरान अपने आप को भी बचाना है और फसल को भी बचाना है। साथ ही जो एग्री ایگریکلچرسٹ ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں کہ گندم جو ہے وہ تیار کھڑی ہے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور دیگر کئی مسائل کی وجہ سے وہ اس کو کاٹ نہیں سکتے. ابھی جو حالیہ سیزن گنے کا ختم ہوا ہے ان کی پیمنٹس جو ہے وہ شوگر ملز کے پاس باقی ہیں, ان کی وہ ادائیگیاں نہیں ہو رہی. تو انفیکٹ جو ہے جو اس جنوبی پنجاب کا کی سب سے بڑی آبادی ہے جو زراعت پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ بہت پریشان ہے. اسی طرح شہروں میں جو ڈیلی ویجر ہیں جو مزدور ہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, کنسٹرکشن کا بزنس جو ہے وہ بند ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو آپ نے بات کی کہ راشن جو ہے ان غریبوں کو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تو دے رہے ہیں اور اب جو ہے وہ تیسرا دن ہے آج کے یہ جو احساس کفالت پروگرام پرائم منسٹر نے شروع کیا ہے اس کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہوا ہے. تو بہاول پور ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ تقریباً 1,02,000 لوگوں کی ایک لسٹ آئی ہے جو کہ پرانی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہی ان کے ریکارڈ پہ ہی چل رہی ہے. ان کو جو ہے وہ ضلع میں بلا کر خواتین کو جو ہے ان کے پیسے 12,000 روپے فی خاتون جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. تو شاید اس سے کچھ وقتی طور پر ان کو ریلیف تو حاصل ہو سکے گا, لیکن کوئی اگر یہ لاک ڈاؤن خدا نہ خواستہ یہ اور بڑھ گیا تو اس سے اور علاقے کی صورتحال خصوصاً معاشی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو جائے.
بہت شکریہ محمد امین عباسی صاحب, آپ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی مجلس عاملہ کے رکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دا نیوز اخبار اور جیو نیوز کے بھی نمائندے ہیں. آپ نے ہمارے سننے والوں تک جنوبی پنجاب کی کرونا بحران کے دوران کی صورتحال پر معلومات پہنچائیں, بہت شکریہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی چیئرمین جام حضور بخش. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کے اس بحران کے دوران جبکہ ملک لاک ڈاؤن ہے, کسانوں کی کیا صورتحال ہے, کسانوں کے کیا حالات ہیں اور ان کی کیا مشکلات ہیں اور وہ ان مشکلات سے کیسے نمٹ رہے ہیں. السلام علیکم جام حضور بخش صاحب, آپ پورے پاکستان کا یہ کسان بورڈ ہے جس کے کسان بورڈ پاکستان جس کے آپ مرکزی چیئرمین ہیں, بتائیے ہمارے سننے والوں کو کیا کیفیت ہے اس وقت کسانوں کی, وہ کن مشکلات سے اس وقت گزر رہے ہیں.
دیکھیں جی, اس وقت یہاں پاکستان کی زراعت کے حوالے سے جو ٹائم ہے یہ ہے گندم کی کٹائی کا اور یہ غذا اعتبار سے پاکستان کے لیے, زراعت کے لیے بھی اور یہاں مقامی طور پر بھی کسان کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہ پورے سال کی گندم اپنے خرچے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے اور اپنے اخراجات کے لیے وہ یہ گندم جو ہے کر کے رکھتا ہے اور باقی جو ہے وہ بیچ کر اپنے پھر سال کا گزر بسر بھی کرتا ہے اور پاکستان کے اس 22 کروڑ عوام کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے کسان پاکستان کا وہ پاکستان کی جو ضرورت ہے اس سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے, ہم کسی کے اس حوالے سے کوئی محتاج نہیں ہے. لیکن میں عرض کروں کہ اس وقت جب جو کرونا کا پوری دنیا کے اندر بہت بڑی فضا پھیلی ہوئی ہے, پینس ہے, ہیراسمنٹ ہے اور دنیا بہت زیادہ پریکاشن پہ گئی ہوئی ہے اور پریکاشن میئر لے رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, مجھے یہ کہنے میں انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے دیہاتوں میں جب یہ گندم کی کٹائی کا ہے تو یہاں سارا سسٹم اکثر 60% مینوئل ہے, لوگ ہاتھ سے اب بھی گندم کاٹتے ہیں, پھر ہاتھ سے کاٹ کر پھر کریشنگ ہوتی ہے. تو اس کے اندر لوگ مقصد ہے کہ سوشل ڈسٹینس نہیں رہتا ہے, لوگ کافی تعداد میں اس گندم کی کٹائی کرتے ہیں, مل جل کر کرتے ہیں, مل جل کرنے کے علاوہ کھانا پینا اکٹھے بیٹھ کر کرتے ہیں اور سارے کام جو ہیں وہ اس میں کسی قسم کا سوشل ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے. تو مجھے یہ کہنے میں انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت دیہاتوں میں کسی قسم کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے اور کسی قسم کا لوگوں کے اندر کوئی سوشل ڈسٹینس کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی اویئرنیس پیدا کی گئی ہے. میں کیونکہ ذاتی طور پر کاشتکار ہوں اور میں ذاتی طور پر ان سارے ریموٹ ایریاز میں رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں اپنی تنظیم کے حوالے سے بھی, اپنے پروفیشن کے حوالے سے بھی, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کے پاس جو ہے حکومتی لیول پر یا کسی طریقے سے بھی 1% اویئرنیس ہو. لوگ ویسے ہی زندگی کی ڈگر پر جا رہے ہیں جیسے پہلے تھے اور ان کے معمولات ویسے ہی جا رہے ہیں جیسے تھے, اور جیسے میں نے کہا گندم کی کٹائی ہے تو ان حالات میں इनको जरूरी था कि बताया जाता कि आप सोशल डिस्टेंस रखना है, आपको ये तरीके करने हैं, हाथ आपने कैसे धोने हैं, सैनिटाइजर कैसे यूज करना है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कोई लोगों को ना सहूलत दी गई है और ना ही उनको इस किस्म की कोई अवेयरनेस दी गई है। हाँ, तो किसान तंजीमें जो है वो लोगों को घर घर जाके बता रही हैं ऐसा करना है, इस तरीके से करना है या वैसे करना है। हुकूमत की सारी की सारी तवज्जो शहरों के ऊपर है और शहरों के ऊपर वो किए हुए हैं, देहात इससे मुस्तस्ना है। कोरोना के हवाले से देहातों को कोई अवेयरनेस नहीं है। टाइम जो है वो बहुत जरूरी है कि इनको इस टाइम पे जब गंदों की कटाई हो रही है तो ये उनको बताना चाहिए कि आप इसमें सोशल डिस्टेंस रखें, गैदरिंग ज्यादा ना हो और आप इसको जो है समझें कि कोरोना वायरस क्या है।
इसके अलावा ये तो हो गया उनका मसला जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनका इनकी जो गंदम कटाई हो रही है वो मुनासिब कीमत पर हुकूमत खरीद नहीं रही, कोई ये मसला भी मौजूद है?
देखें, हुकूमत जो है ऐसा करती है जब गंदम ज्यादा हो जाए तो फिर लाइनें लगी होती हैं गंदम के खरीदारी मराकज के ऊपर, जहाँ गंदम हुकूमत अपने टारगेट के मुताबिक खरीदती है वहाँ ज्यादा गंदम हो जाए तो फिर वो मनमानी करते हैं, फिर वो ट्राइयों की दो दो पांच पांच छह छह आठ आठ किलोमीटर लाइनें होती हैं, फिर उसमें से वो कटौती लगाते हैं कि इसके अंदर इतना कचरा है, इतना मट्टी है, इतना ये है, फिर उसके वेट के अंदर उसको खराबी करते हैं और फिर वो डायरेक्ट लेते भी नहीं है, दरमियान में कोई ब्रोकर के थ्रू लेते हैं या कोई ऐसा जो उनका एजेंट होता है उसके थ्रू लेते हैं। ये तो हो गई उस वक्त जिस वक्त गंदम ज्यादा हो गई। अब इस साल जो गंदम का आने के लिए तवक्कुआत है, हुकूमत को यह मालूम है कि गंदम इस वक्त कम आएगी, तो इस वक्त हुकूमत ने बैन कर दी है कि कोई भी प्राइवेट इदारा, कोई भी प्राइवेट लोग, कोई भी कोई चीज जो है वो इसकी खरीदारी नहीं कर सकते। अब इन हालात में जब गंदम की कीमत को बेहतर किसान को मिलना चाहिए था, इन्होंने किसी किस्म की प्राइवेट खरीदारी जो है मना कर दी है, तो मैं समझता हूँ ये किसान कुछ पॉलिसी है कि जब उसको अच्छा रेट मिलने वाला है, जब वो अच्छा रेट हासिल कर सकता है तो इन्होंने एक रेट फिक्स कर दिया है और वही रेट वो हुकूमत को दे सकते हैं, किसी और को नहीं दे सकते हैं, और वो है 1400 रुपए फी 40 किलोग्राम। अब 1400 रुपए फी 40 किलोग्राम, यही गंदम जो है गंदम आने से पहले प्राइवेट सेक्टर जो 2000 रुपए तक 1800 रुपए तक बेचता रहा है, यही प्राइवेट सेक्टर 1800-2000 रुपए का गंदम बेचता रहा है और बार बार बहरान पैदा हुआ है, लोगों ने इसको जमा किया है, लोगों ने इसको स्टॉक किया है और जिस तरीके से और चीजें यहाँ स्टॉक हुई है, चीनी मीनी हुई है, इधर गंदम और आटे का बहरान भी हुआ है, लेकिन हुकूमत ने उन लोगों को नहीं रोका कि आप लोग ज्यादा मुनाफा कमा रहे हो, 1400 के दाम पे गंदम खरीदी थी तो 1800 और 2000 कमा रहे हो, लेकिन अब जब गंदम का सीजन आया है तो किसान के ऊपर ये पाबंदी है कि वो 1400 रुपए के ऊपर सिर्फ सरकारी गोदामों पर गंदम बेच सकता है, बाहर नहीं बेच सकता। तो हम हुकूमत की इस पॉलिसी जो किसान कुछ पॉलिसी है, किसान दुश्मन पॉलिसी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि जब तक आप किसान को आप आसूदा नहीं करेंगे, इसकी मुल्क की जो है वो किसी किस्म की ज़रात जो है वासुदा नहीं होगी, और खुदा ना करे फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किनारा कश हो जाए तो इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी भी आ सकती है। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, कोरोना के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी लोगों के ऊपर मुसीबत है कि वो हुकूमत को गंदम बेचने पर मजबूर है, हुकूमत जो है उनसे सिर्फ 1400 रुपए खरीद कर रही है। हर साल एक तरीकाकार होता है कि वो जैसे हम पंजाब में होते हैं और पंजाब के अंदर जितने जिला गंदम प्रोड्यूसिंग है तो उनके जिला के अंदर प्रोक्योरमेंट सेंटर मरकज खरीदारी बना देते हैं और उसमें आके लोग अपनी गंदम जो है वो बेचते हैं। तो मेरा ख्याल 170 या 180 के करीब जो है वो परचेज सेंटर हैं या 200 के करीब परचेज सेंटर हैं, तो उनके ऊपर जो है वो गंदम वगैरह जो है वो आके बेचते हैं। इस वक्त गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और गंदम की थ्रेशिंग हो रही है और अभी अभी इन्होंने बारदाना जिसको कहते हैं उसका बैग, ट्यूब बैग वगैरह जो होते हैं ताकि वो किसान उसमें गंदम डाल के उनको दे सके, या पॉलीथीन बैग होते हैं वो दे सके, वो इन्होंने तकसीम कर दिए हैं और जैसे जैसे किसान के ऊपर गंदम आती जाएगी उसके पास वो इन जूट बैग में या इन पॉलीथीन बैग में डाल के इनके जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है वो उनके ऊपर पहुंचाता जाएगा और वो उनको टोकन दे देंगे कि जाके फलां बैग से ले लो। तो ये सीजन अभी स्टार्ट हो चुका है और ये तकरीबन 40 डेज का होगा, लेकिन इसमें भी ये है कि ये कोई 4-5% जो इनको कोटा है वो डेली का कर रहे हैं, उसमें भी किसान बहुत जमा होता है, बहुत खज्जल होता है। ये रोजाना की बुनियाद पर बेहतर अंदाज में अगर ये ज्यादा से ज्यादा गंदम लें तो ये पीरियड कम भी हो सकता है और जिम्मेदार को फायदा भी हो सकता है कि वो अपनी गंदम जल्दी डिस्पोज ऑफ करे, पैसे करके लेके इनसे अगली फसल काश कर सकता है। तो ये भी है कि ये गंदम जो है ये डेली बुनियाद पर कम से कम ले रहे हैं, जिससे जिम्मेदार के जो है वो पैनिक होती है, जिम्मेदार को जो है इस बारे में परेशानी होती है। तो ये सीजन इस वक्त स्टार्ट है गंदम परचेज का पाकिस्तान में।
तो क्या इस कोरोना बुहरान के दौरान ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है किसानों को कि वो जो गंदम है वहां तक पहुंचा सके इन मराकिस तक?
देखिए अभी इन्होंने कोई रिलैक्सेशन भी है, कोई दो एक दिन हुए हैं जिसमें इन्होंने जैसे फ्रूट की या होटल्स हैं या बक्सर रेस्टोरेंट हैं या और चीजें हैं इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया है, ऐसे ही इन्होंने जरात वाली चीजों को भी थोड़ा सा रिलैक्स किया है, जैसे मकसद पेस्टिसाइड की शॉप्स हैं, जैसे जिम्मेदारों के लिए वो कोई बीज बीज की शॉप्स हैं उनको रिलैक्स किया है। अगर ये अगर इनको जो है गंदम की जो तहसील है या ट्रांसपोर्टेशन है अगर इसको बैन करेंगे तो फिर इसकी कोई किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकेगी, मेरा अपना ख्याल है। और ये यकीन इस पर रिलैक्सेशन करेंगे क्योंकि फिर ये जाहिर प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकती, गंदम खरीद नहीं सकते और ये हुकूमत को करनी पड़ेगी। और हुकूमत की क्योंकि ये अपनी जरूरत है कि उसने अपने गोदामों में गंदम को जमा करना है और किसान से खरीदना है तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इसको अलाउड हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया जाम हुजूर बख्श साहब, आप किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन हैं और आपने बड़ी तफसील से बताया कि कोरोना बहरान के दौरान इस वक्त पाकिस्तान में किसानों की क्या सूरत हाल है, खासतौर पर आपके एरिया में जो बहावलपुर का एरिया है और पूरे पाकिस्तान के एरिया की आपने जनरली मालूमात फराहम की। बहुत शुक्रिया।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
जुनूबी पंजाब में जो काश्तकार हैं इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है, इस बारे में तो आपको हमने मालूमात पहुंचाई, जाम हुजूर बख्श ने इस पर गुफ्तगू की। और अब हम बात करेंगे डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर से, जमशेद सिंधु से, जो कि फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि इस वक्त जनूबी पंजाब के खासतौर पर बहावलपुर डिवीजन के जो काश्तकार हैं उनके लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और क्या वो बातें जो जाम हुजूर बख्श ने बताई उनमें उनके बारे में वो कुछ कहना चाहेंगे कि अब इन इतराजात की रोशनी में वो किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो आइए जमशेद सिंधु से गुफ्तगु करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद सिंधु साहब।
जी मैम, वालेकुम अस्सलाम।
जमशेद सिंधु साहब कुछ बताइए कि आपका जो डिपार्टमेंट है काश्तकारों के लिए जो इस वक्त कोरोना बहरान के दौरान कई मसाइल का शिकार हैं क्या कुछ कर रहा है?
जी जी, तो मैम इस सिलसिले में ये कि आज से 3 हफ्ते पहले सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने ना हमें डायरेक्शंस दी थी, उन पे हम अवे कर रहे हैं। हमने पहले तो लिटरेचर छपवाया है जी, लिटरेचर की प्रिंटिंग करवाई है, उसपे ना तमाम जो हमारी हार्वेस्टिंग है उसकी टेक्नोलॉजी है और उसके साथ उसके कोरोना के हवाले से जो उसके हिफाजती इकदाम है ना वो है सर उसमें लिखे हुए सारे तरतीब से,
ठीक
लिटरेचर है। सेकंड हमने किया मैम, हमारे पास चूंकि फील्ड टीम होती है, फील्ड असिस्टेंट होता है हमारा, फ्रंट वर्कर जो होता है वो होता है एक यूनियन काउंसिल लेवल पे, उसे हमने टास्क दिया है कि वो विलेज में जाते हैं क्योंकि अब तो वो अकेला सफर करता है, उसके पास मोटरसाइकिल होता है, उधर वो अनाउंसमेंट करता है, सेम टेक्नोलॉजी जो हमने उसे प्रिंट करवा के दी है ना, सेम मैसेज वो मसाजिद में मौलवी साहब के थ्रू कि उसमें हम फार्मर्स को कह रहे हैं कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद निकले, साफ कपड़े पहने, हाथ धो के निकले, मुंह धोए, अलहदा अलहदा काम करें, अलहदा अलहदा खेतों में काम करें, आपने काम के दौरान खाना पीना नहीं है, अगर पानी पीना है तो आपने गर्म पानी इस्तेमाल करना है, खाने से पहले आपने दोबारा हाथ धोने हैं, ये तमाम जो बेसिक चीजें हैं ये हम अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा उससे बड़ा सेगमेंट है एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसके पास गाड़ी होती है, हमारे पास डिवीजन में 60 से ज्यादा व्हीकल्स है जिन पे हमने स्पीकर्स जो लगा रखे हैं लाउड स्पीकर्स, उन पे भी हम रेगुलरली सफर भी करते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं जहां हार्वेस्टिंग हो रही होती है, और स्पेशली हम जो नोटेबल लोग हैं, नंबरदार हो गए या इलाके के जो बड़े हैं उनको हमने ऑनबोर्ड किया हुआ है, और ये तो हम प्रैक्टिकली फील्ड में करते हैं। दूसरा हमने ये तमाम जो हमारी अपनी कंपेन है इसका हमने वॉइस मैसेज बना के जितने व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे जिम्मेदारों के हमने उन्हें मैसेज दिया हुआ है, उसके अलावा हमने ये तमाम मैसेज जो है वो अपने फेसबुक पे भी तमाम लोग राइट फ्रॉम फील्ड असिस्टेंट अप टू डायरेक्टर तमाम लोगों ने अपने वॉइस पे रिकॉर्डिंग करके वो उस पे फेसबुक पे भी दिया हुआ है ताकि मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस हो सके और होपफुली मैसेज हमारा जा भी रहा है और लोग उस पे अमल भी कर रहे हैं।
लेकिन जमशेद सिंधु साहब, हमने अभी कुछ देर पहले बात की कुछ माहिरीन से और कुछ अहदेदार जो काश्तकारों के लिए काम करते हैं, उन्होंने ये हमें बताया है कि बहुत सारे इलाकों में जहाँ की हार्वेस्टिंग शुरू है खासतौर पर बहावलपुर के इलाके में भी किसानों को अभी कुछ नहीं पता कि ये कोरोना बहरान से कैसे बच रहे हैं और क्या उनको तदबीरें अख्तियार करनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आपने
नहीं,
सब जगह
मेरी तो कल जहाँ मजदूर भाई साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे खुद मैसेज पे देखा, फेसबुक हमारी देख के उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि आपने ये जो मैसेज है बड़ा कंप्लीट मैसेज है आपका।
अच्छा
इस तरह देखिये मैम, एक्चुअली ये ना कि हमारा स्टाफ देखिये हम 300 के करीब लोग फर्ज कर काम कर रहे हैं, तो आबादी तो लाखों में है ना, मिलियंस में है। इवन देन हम अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तो दूसरा ये था मैम, ये बहुत ज्यादा इसमें सोशल डिस्टेंस वैसे भी मेंटेन रहता है इसमें हार्वेस्टिंग के दौरान, और लेदर लेदर 3, 5, 5, 6, 6 फुट के पे बैठ के लोग जो हाथ से भी कटाई करते हैं ना, उनका भी इस तरह डिस्टेंस रह जाता है कि वैसे कटाई के दौरान भी वो 5-6 फुट के नेचुरली भी उनका स्टाइल यही होता है हार्वेस्टिंग का।
लेकिन
और अगर ट्रैक्टर से कर रहे हैं, रीपर से कर रहे हैं, तो उसमें अकेला बंदा काम कर रहा होता है, हार्वेस्टर से करता है तो वो अकेला कर रहा होता है। इसमें सिर्फ एक जगह पे थोड़ा सा रश आता है, वो होता है थ्रेशिंग, उसकी उसमें हम फोकस कर रहे हैं कि जहाँ थ्रेशर लगा हुआ है हम उस पे जाके उनको ज्यादा फोकस करें।
अच्छा लेकिन वो लोग, उनको ये भी नहीं पता कि इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाना, उनके तो कल्चर में शामिल है कि जब वो हार्वेस्टिंग कर चुके हैं तो इकट्ठे बैठ।
यही देखे, यही तो हम अवेयरनेस दे रहे हैं ना मैम उन लोगों को।
अच्छा
यही अवेयरनेस तो दे रहे हैं।
तो
देखिए जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ये भी बहुत सारा देहातों में भी लोग ये इस्तेमाल करते हैं, इससे भी ज्यादा जो हमारा ज्यादा जिसका इम्पेक्ट आ रहा है वो है जो हम मसाजिद में अनाउंसमेंट करते हैं ना हर विलेज में जाके, वो तो तमाम लोग सुनते हैं ना जी।
अच्छा तो कुछ आपको अंदाजा कि आपने अब तक कितने विलेजेस कवर कर लिए हैं और कितने हैं जहां तक आपका मैसेज भी नहीं
पहुंचा? हमारे पास मैम, हमारे पास है मोर देन 2700 विलेजेस ना डिवीजन में, और अब तक कोई ऐसा विलेज नहीं होगा जहां ये हमने अनाउंसमेंट नहीं की।
अच्छा तो इसके अलावा कुछ आप ये बता सकेंगे कि वहां पर कोई मरीज पाया गया या उनकी कोई टेस्टिंग का सिलसिला वहां पर देहातों
में? मैम अभी तक अल्लाह का बड़ा एहसान है कि देहातों में इस तरह का अभी तक हमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं आई कि कोई बंदा इसमें उस पर कोई बुरा असर हुआ है या कोई कोरोना से वो मशकूक है, इस तरह का अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती।
अच्छा जमशेद चंद साहब, ये आप बता रहे हैं कि हार्वेस्टिंग है, तो क्या हार्वेस्टिंग के बाद इन किसानों को अपनी जो जो गल्ला है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बंदोबस्त मौजूद है या उसको बेचने के लिए उनको मुनासिब इंतजाम का भी सिलसिला जारी है?
इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने मैम, वैसे फेडरल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया हुआ है, ये जो पहले रश लगता था जिम्मेदारों का ना वो उन्होंने ओपन कर दिया है, अब वो जो मिडिल मैन है ना वो खरीदारी कर रहे हैं, जहाँ हमारे 101 बंदे ने जाके काम करना है तो वहां एक मिडिल मैन काम कर लेता है उतना, इसलिए वो उधर भी हमारे जो स्टोरेज है जहाँ पे हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वहां पे भी अब रश नहीं है।
लेकिन ये भी एतराज किया जा रहा है कि इस वक्त जबकि किसान बहुत बुरी हालत में है और उसकी जो जो गंदम की वो कटाई कर रहा है उसके लिए लाजमी उसके लिए मिडल मैन डाल दिया गया है, तो जो मिडल मैन है वो अपनी मर्जी से उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको कम कीमत पर उनसे खरीद कर गवर्नमेंट को दे रहा है, वो बताइए कि इस वक्त किसानों को कैसे? जी जी
मैं समझता हूँ आपको, कैसे मैम गवर्नमेंट का रेट है 1400 ठीक है, और इस टाइम फील्ड में 1300 प्लस पे चल रहा है रेट, 1330-40-50 के दरमियान, बाकी तो मैडम उसकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी होते हैं ना, अगर जिम्मेदार खुद लेके जाता है ना सेंटर पे तो उसके भी उसे भी तो वो एक्सपेंसेस 50 रुपीज के करीब भी पड़ जाएंगे कि उसने बारदाना लेना जैसे पिछले सालों में होता था, अब ये जो ओपन कॉम्पिटिशन हुआ इससे रेट हेल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला।
लेकिन कहा ये जा रहा है जो इतराज कर रहे हैं कि गरीब किसानों को इस वक्त मौका था कि उनकी गंदम जितनी भी हुई थी वो उसे अच्छी कीमत पर बेच सकते थे पहले,
नहीं,
जब
नहीं, नहीं, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि इस सिस्टम में आम फार्मर को भी अच्छा रेट मिलेगा पिछले सालों के हिसाब,
क्योंकि इस दफा गंदम कम पिछले साल की नस्बत कम पैदा हुई है, और जब कम पैदा हुई
नहीं,
है
नहीं अगर आपको किसी ने बताया तो गलत है, इस साल इंशाल्लाह हमारी पैदावार पिछले साल की नस्बत बहुत बेहतर है।
तो आप समझते हैं कि इस साल जो किसान है पिछले साल की नस्बत अपने गंदम से ज्यादा पैसा कमाएगा बेचेगा?
इंशाल्लाह ताला 100% कंफर्म है मैम, 100% जो मैं कह रहा हूँ मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि हमारी पैदावार जो है फी एकड़ पिछले साल से बेहतर है और रेट भी इंशाल्लाह ताला ठीक है।
तो आप समझते हैं कि इस वक्त कोरोना बहरान के दौरान जो किसानों की जो सरगर्मियां हैं वो रूटीन में चल रही हैं, उनको कोई मसला पेश नहीं आ रहा?
अब नहीं इंशाल्लाह तआला मैम, एक तो वैसे भी वो रेजिस्टेंट लोग होते हैं, ये हमारी रोजी होती है पूरे साल की, इसमें हम लोग फार्मर लोग जो है वो बहुत सीरियसली इन्वॉल्व होते हैं, और आजकल चूंकि और तो कोई बिजनेस नहीं चल रहे इसलिए हमारे पास लेबर भी जिम्मेदार के पास ज्यादा अवेलेबल है, हार्वेस्टिंग बड़ी स्पीड से चल रही है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और इंशाल्लाह ताला पैदावार तो मैंने कंफर्म कर रहा हूँ आपको, हम काफी दिन से इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों के, अभी पैदावार कितनी आ रही है, पिछले साल से बहुत बेहतर पैदावार आ रही है हमारी, और रेट भी मार्केट में मुनासिब है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमशेद सिंधु साहब,
बहुत शुक्रिया,
बहुत
थैंक यू वेरी मच आपने मुझे
टाइम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी ये थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर जनाब जमशेद सिंधु, जो बता रहे थे कि जुनूबी पंजाब खासतौर पर बहावलपुर के इलाके में, बहावलपुर डिवीजन के इलाके में जो काश्तकार हैं उनके मसाइल को हुकूमत किस तरह हल करने की कोशिश कर रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, हमारा ये प्रोग्राम अभी जारी है, सुनते रहिए और एक छोटा सा ब्रेक।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन, हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से कोरोना, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से कोरोना बहरान के बारे में खसूसी प्रोग्राम, मैं हूँ यास्मीन जमील। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी फलाही तंजीमें घरों में बंद लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं और उनके घरों में राशन पहुंचाने में और उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने में मदद कर रही हैं, और इसमें नौजवानों की तंजीमें भी बहुत नुमायाँ नज़र आती हैं। ऐसी ही एक तंजीम है यूथ पार्लियामेंट, पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट, जिसके सदर हैं मोहम्मद अबू बकर, जो लाहौर से इस वक्त टेलीफोन पर हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी तंजीम इस वक्त क्या कुछ कर रही है अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद के लिए और पाकिस्तान भर में। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब।
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर।
बहुत शुक्रिया अबू बकर, बताइए कि आपकी यूथ पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त क्या कुछ कर रही है लोगों की मदद के लिए।
मैम जिस तरह के एक्चुअली हमारी ये डोमेन नहीं है कि स्पेसिफिकली हम राशन ड्राइव्स और इस चीज पे काम करें, लेकिन जब कोरोना ने पाकिस्तान को हिट किया तो हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इसके ऊपर प्रॉपर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीजों के ऊपर काम किया। उसमें सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का, उसमें हमने कुछ डॉक्टर्स पे मुश्तमिल सबसे पहले टेलीमेडिसिन सर्विसेज का आगाज किया और लोगों को घर बैठे हम टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे थे। और सेकंड स्टेप में हमने हैंड सैनिटाइजर और मास्क, चूंकि पूरी दुनिया में ये एक वायरस जो है वो फैल चुका था तो बहुत ज्यादा तादाद में ये चीजें यूज होना लगी और इसकी शॉर्टेज होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बंद होगी, तो हमने हैंड सैनिटाइजर और मास्क जो है वो अब तक हम 10,000 प्लस जो है वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस फोर्स और आर्मी के जवानों के अंदर उनकी जगह पे जाके हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड फेज में हमने राशन ड्राइव करना शुरू की और डिफरेंट सिटीज में, ना सिर्फ लाहौर में, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में जिसमें लाहौर भी इंक्लूड है, कराची है, हैदराबाद है, टोबा टैक्सिंग है, शेखपुरा है, इसके अलावा भी बहुत सारी सिटीज हैं जहां पे पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के रजाकार जो हैं वो लोगों को घर घर जाके फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके बगैर किसी मजहब की तफरीक के, हमने किसी से किसी का मजहब नहीं पूछा, किसी से किसी का फिरका नहीं पूछा, किसी से कुछ और चीज नहीं पूछी, जो जरूरतमंद है उसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम उनके घर जाके राशन प्रोवाइड कर रहे हैं और अब तक हम 5,000 फैमिलीज को सर्व कर चुके हैं इस तरह से। और अब हमारा प्लान ये है कि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घरों में मैसूर हैं और वो कुछ कर नहीं सकते, तो उनके लिए हेल्दी एक्टिविटी ये है कि हम ऑनलाइन कुछ कोर्सेज का आगाज करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, और इसके अलावा जो है वो मेंटल स्ट्रेस के ऊपर और स्टिग्मा के ऊपर जो है वो हम डिफरेंट ऑनलाइन सेशंस का आगाज कर रहे हैं। और जैसा कि पाकिस्तान ज्यादातर आबादी जो है वो मुस्लिम्स पर बेस्ड है, तो आगे रमजान का महीना स्टार्ट हो रहा है कुछ 10-1 दिनों में, तो जिस तरह से रमजान का आगाज होगा तो हम दोबारा से वो राशन का पैकेज शुरू करेंगे और रमजान पूरा ये सिलसिला चलता रहेगा और हम लोगों के घरों तक जो है वो खाने पीने की अशिया वो पहुंचाते रहेंगे।
तो आम दिनों में माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं, और आपके कितने अरकान हैं जो वॉलंटियर्स हैं जो आपके साथ इस वक्त काम कर रहे हैं और कहां काम कर रहे हैं?
हमारी वैसे तो जो है वो 10,000 के करीब वॉलेंटियर्स हैं जो डिफरेंट सिटीज के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमने जो है वो 1,000 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक फोर्स बनाई हुई है जिनको हमने प्रॉपर पहले तो ट्रेन किया है और उसके बाद वो फील्ड के अंदर जाते हैं और प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए वो सारा ये राशन की तरसील का जो सिलसिला है वो डोर टू डोर जाके जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी तरह जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, सबसे जरूरी चीज ये है मैम, लाहौर के अंदर तो बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं और काफी ज्यादा कम्युनिटी जो है वो इंटरनेट एक्सेस में है, लेकिन आप जिस तरह हम काम कर रहे हैं नवाही इलाकों में, बहावलपुर के नवाही इलाके, साउथ पंजाब में, रहीम यार खान में, खानपुर में, इन इलाकों में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कोरोना नाम की भी कोई वबा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में हिट हो चुकी है, तो उन इलाकों में जाके अवेयरनेस देना ये एक बहुत बड़ा जो है वो मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रजाकार जो है, हमारे वॉलंटियर्स जो है वो निकल रहे हैं और उनके घर तक जा रहे हैं और उनको प्रॉपर अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं उन इलाकों।
तो कैसे आप उनको इस वक्त मुनज़्ज़म कर रहे हैं, वो तो जगह जगह मौजूद हैं, तो किस तरीके से आप इन 1,000 लोगों को, और ज्यादातर किन शहरों पर ये सेंटर्ड हैं जिनको आप मरबूत करते हैं और ये एक्टिविटीज कर रहे हैं?
मैम पूरे पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो 1,000 लोगों की जो तादाद है वो जो है वो काफी कम है, तो लेकिन हमारे ज्यादातर जो वॉलंटियर्स जो हैं वो इस वक्त 100 से 120 के दरमियान वो लाहौर में मौजूद है। लाहौर हमारे ऑफिस में हम इस तरह से करते हैं कि जो भी हमारी चीज आ रही है वो पहले ऑफिस में सेंटर्ड होगी, उसकी पैकिंग जो है वो प्रॉपर हम फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करके और प्रॉपर उसकी पैकिंग करते हैं, और बजाय इसके कि लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके बुला के और सबको राशन दिया जाए, हम ये काम नहीं करते, हम उनकी जगह को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर मैपिंग करके हमारी जो है वो 3 से 4 मेंबर्स पे मुश्तमिल जो टीम है वो उन इलाकों में जाके उनको डोर टू डोर जो है वो ये चीज प्रोवाइड करती है और ये सहूलियत उनको डोर टू डोर मिलती है।
तो फंडिंग का आप कहाँ से फंड्स ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फ्री पहुंचाते हैं आप लोगों तक?
बिल्कुल मैम, फंडिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो अभी तक हमारे पास जितनी भी फंडिंग आई है वो हमारे मेंबर्स की जनरेट की हुई फंडिंग है, हमने किसी फंडिंग एजेंसी से या किसी भी और इदारे से फंडिंग नहीं ली, हमारे अपने बच्चे फंड जनरेट करते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स से अगर वो सपोर्ट करना चाहें, को फ्रेंड सर्कल्स में सपोर्ट करना चाहे तो वहां से, लेकिन एज सच किसी भी फंडिंग एजेंसी से हमने कोई फंड नहीं लिया और हम अपने फंड्स जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत खुद जनरेट कर रहे हैं।
तो ऐसा भी हुआ अबू बकर ये कि आपके जो वॉलंटियर्स तकसीम कर रहे हैं राशन वगैरह, कहीं उनको तो कोई मुश्किल पेश नहीं आई या उनमें से तो कोई कोरोना का मुब्तला नहीं हो गया मर्ज में?
मैम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रॉपर SOPs को पहले फॉलो कर रहे हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी किसी किस्म की जो है वो रिपोर्ट नहीं है, प्रॉपर जो है वो कंटिन्यूसली हाथों को धोना और प्रोटेक्टिव किट्स का इस्तेमाल करना, इवन अब तो हमने अपने वॉलंटियर्स को जो प्रोटेक्टिव सूट्स हैं वो भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं जो फील्ड में जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है।
कोई ऐसी खास चीज जो आपके मुशाहदे में आई हो राशन की तकसीम के वक्त, जो आप चाहें कि लोगों को बताएं कि ऐसा ना करें, या कोई ऐसी बेहतियाती हो रही है जो जिससे बचना चाहिए लोगों को?
मैम बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मौका है मेरे पास कि मैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचा सकूं। हमें कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिनके पास जो है वो 2 से 3 दफा राशन पहले से पहुंचा हुआ है और उन्होंने हमने कहा कि हमें राशन की जरूरत नहीं है, आप किसी और जरूरतमंद को राशन पहुंचा दें, क्योंकि आप ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि वो बंदा नीडी है या नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि उसको कोई जो है वो पहले से राशन मिला है या नहीं मिला। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ऑन बोर्ड लें और जो डाटा है उसको एक सेंट्रल डाटा बना लें ताकि पता चलता रहे, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, कुछ पता नहीं है कब तक प्रोलॉन्ग होगी कब तक नहीं, तो एक सेंट्रल डाटा जब हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा उससे हम ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं कि लोगों को कितना राशन पहुंच चुका है, इनको और जरूरत है या नहीं है, और इसी तरह अगर गवर्नमेंट इसमें हमारा साथ दे दे तो जिन लोगों को जो गवर्नमेंट की स्कीम में से 12,000 रुपए मिल चुके हैं अगर उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सके तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी, ताकि जो बिल्कुल सबसे ज्यादा मुस्तहिक अफराद हैं उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जा सके। और दूसरा थोड़ी सी एक जो सेकंड नंबर पे चीज देखने को आती है कि कुछ लोग भी अभी तक इसको सीरियसली नहीं ले रहे। लोग बगैर मास्क के हमने घरों से बाहर निकलते देखे हैं। लॉकडाउन में वो सख्ती नहीं है जो सख्ती होनी चाहिए। साथ साथ आठ आठ लोग बगैर मास्क के एक जगह पे खड़े हैं और डिस्टेंसिंग को जो है वो फॉलो अप नहीं किया जा रहा है SOPs के ऊपर जो है, और कई इलाकों में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ये चीज देखने में ही। लेकिन अभी भी अंडर प्रिविलेज्ड इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस चीज के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है और हमें उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबू बकर, पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के आप सदर हैं और आप यकीनन इस वक्त अपने घर में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत सारे माशाल्लाह बच्चे भी हैं। तो
मैं बिल्कुल मैम एक स्लम एरिया के अंदर मौजूद हूं और यहां पे बहुत सारे बच्चे जो है वो हम लोग यहां पे आए हुए हैं और यही चेक कर रहे हैं कि ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं यहाँ पे हम जो है वो, क्योंकि यहाँ पे पहले इनको कोई ना कोई लोग खाना दे देता था, कोई इधर एक दस्तरखान लगता था जहाँ से ये बच्चे खाना खा लेते थे, इनके घर वाले खाना खा लेते। तो आज हम यही असेस करने आए हैं अब हम इनको कुक्ड फूड कैसे पहुंचा सकते हैं।
तो ये सारे बच्चे जो बाहर गलियों में इस वक्त मौजूद हैं तो इनको कोई रोकने वाला इस वक्त नहीं है कि ये घरों में जाएं?
मैम ये एक कच्ची आबादी है और यहाँ पे वो टेंट्स की सूरत में और कुछ कच्चे मकानों की सूरत में बच्चे जो हैं वो रहते हैं, तो कोई जाहिर है रोकने वाला नहीं है।
आबादी का नाम क्या है इसकी?
ये बिल्कुल सब्जाजार के अंदर जो है ये कच्ची बस्ती एक मौजूद है और लाहौर का इलाका है सब्जाजार और स्लम्स एरिया है ये सब्जाजार के अंदर। यहाँ पे झुग्गियां वगैरह जो है वो मौजूद है। तो
अच्छा, आप जो है तो इसका कोई नाम नहीं है इस बस्ती का?
नहीं मतलब ऐसा बस्ती का नाम नहीं है, इसको झुग्गियों के नाम से पहचाना जाता है। सब्जाजार लाहौर के अंदर जो है वो एक टाउन है सब्जाजार स्कीम और ये उसके अंदर जो है वो एक जगह के ऊपर जो है वो मौजूद है।
तो आपने क्या देखा कि इन लोगों को अब बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा इस बस्ती को?
ये बस्ती को बिल्कुल भी जो है ना वो खाना नहीं मिल रहा क्योंकि ये नोमैडिक पीपल है, नोमैड्स है, खाना बदोश लोग हैं, इनका कोई एज सच वे ऑफ अर्निंग जो है वो नहीं है और इसी तरीके से किसी कोई ना कोई जो है वो इन तक पहुंच जाता था और ये दस्तरखान वगैरह से खाना खा लेते थे और इन तक फूड पहुंच जाता था। तो अब ये सिलसिला जो है वो काफी हद तक कम है तो इसलिए आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं ताकि इनको जो है यहाँ पे हम असेसमेंट कर सके कि हम कैसे मैकेनिज्म डेवलप कर सकते।
तो कोई ऐसा शख्स जो यहाँ मौजूद है जिससे हम बात कर सकें कि इनके क्या मसाइल हैं इस झुग्गी के, इस बस्ती के, कोई है बात कर सकता है कोई?
मैं देख सकता हूँ और एक मिनट मुझे देख लेने दें क्योंकि इधर किसी ने भी कोई वो किट वगैरह जो है या मास्क तक भी नहीं पहना हुआ तो हम अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन लेट मी चेक अगर किसी से बात हो सकती।
लेकिन आप अपनी हिफाजत कीजिए, अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो फिर ना जाइए।
नहीं जस्ट अ मिनट भाई, दो मिनट बात करेंगे, एक मिनट आपसे बात कर रहा हूँ। मैम वो यही हालत है कि इस वक्त जो है ना वो कोई भी, मतलब मैंने आपको बताया ये इलिटरेट पीपल है लेकिन वो ये कह रहे हैं जब यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो मैकेनिज्म डेवलप करने के बाद जब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे तो उस वक्त इनके व्यूज लिए जा सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली जो है वो मैं शेयर कर सकता हूँ।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबू बकर, पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के आप सदर हैं और इस वक्त मसरूफ़ हैं उन सरगर्मियों में जो इस वक्त बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जो कच्ची आबादियां हैं या जो गरीब बस्तियां हैं जहां पर खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, जहां राशन का इस वक्त कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस कोरोना बहरान के दौरान एक तो उन्हें आगाह करें कि किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और दूसरे उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं कम अज़ कम वो उन तक पहुँच सकें, ख़ासतौर पर खाना। बहुत शुक्रिया, हमारी दुआ कि आप अपने मकसद में कामयाब रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बुरानी हालत में मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
और अब अमेरिका में कोरोना के हवाले से एक रिपोर्ट मुदस्सर मंजर की जबानी।
कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद देखकर लॉकडाउन का फौरी फैसला इस वबा से ज्यादातर लोगों को महफूज रखने में मददगार साबित हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कैलिफोर्निया कोविड 19 के मरीजों के लिहाज से अमरीका की रियासतों में चौथे नंबर पर है, न्यूयॉर्क अब भी पहले नंबर पर है। امریکہ کی 50 ریاستوں میں آبادی کے لحاظ سے کیلیفورنیا سب سے بڑی ریاست ہے۔ 1968 میں اسے گولڈن اسٹیٹ کا نام دیا گیا۔ ہر موسم بہار اس کے طول و عرض میں کھلنے والے پوپی کے گولڈن پھول اور اس کا گولڈن گیٹ برج سب اس کے ساحلوں پر غروب ہوتے سورج کی نارنجی کرنوں میں نہا جاتے ہیں۔ 1848 میں یہاں سونا دریافت ہوا اور اب یہ امریکہ کا سائنسی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ اس کی سلیکون ویلی ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر رہی ہے اور ہالی ووڈ اسٹوڈیوز فلمی دنیا میں ثانی نہیں رکھتے۔ مارچ کے مہینے میں اس ریاست میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کی تشویشناک خبریں آ رہی تھیں۔ اس کے ساحل پر ڈائمنڈ پرنسس نامی کروز شپ لنگر انداز ہو چکا تھا اور اس وقت اس میں COVID-19 کے 21 مریض تھے۔ صورتحال قابو سے باہر ہوتی مگر کیلیفورنیا کے گورنر گیوین نیوسم نے اس سے پہلے ہی ریاست بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ انتہائی ضروری عملے کے سوا باقی سب لوگ گھروں میں محصور ہو گئے اور یوں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں مدد ملی۔ کیلیفورنیا میں کووڈ ٹیم اور اسٹیٹ ہیلتھ بورڈ کے رکن پلمنالوجسٹ ڈاکٹر آصف محمود کہتے ہیں کہ کیلیفورنیا کی انتظامیہ نے کرونا وائرس کو روکنے کے جو اقدامات کیے ان سے بہت فائدہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف گورنر نے جلد اقدامات کیے بلکہ جو مقامی میئر تھے انہوں نے بھی فوری ایکشن لیا۔ ان میں سین فرانسسکو، لاس اینجلس اور دیگر بڑے شہروں کے میئر شامل ہیں اور پھر انہیں ریاست کی مدد بھی حاصل تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کیلیفورنیا اس قابل ہے کہ اس نے 500 وینٹیلیٹر نیو یارک کو دیے ہیں اور کولوراڈو اور وسکانسن کو بھی وینٹیلیٹر دیے ہیں اور پھر بھی اتنے وینٹیلیٹر بچ رہے ہیں کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو تو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
کیلیفورنیا میں بڑا مشکل ڈیسیژن تھا کہ اس چیز کا علاج کوئی نہیں ہے اور جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈیزیز اپنا کورس لیتی ہے، تو اس کی سب سے ضروری چیز پریونشن ہے اور اس کی پریونشن کا طریقہ یہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، آپ لوگ اب میل ملاپ ہر طرح پہ ہر لیول پہ کم کر دیں۔
کیلیفورنیا کا موسم اکثر معتدل رہتا ہے، موسم میں گرما خشک اور گرم اور سرما میں بعض علاقوں میں برف باری بھی ہو جاتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اب تک یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ موسم گرم ہوگا تو کرونا وائرس کی عالمی وبا کے اثرات بھی کم ہو جائیں گے، مگر ڈاکٹر آصف محمود کہتے ہیں کہ یہ محض خیال ہے کہ فلو کی طرح یہ وائرس موسم گرم ہوتے ہی ختم ہو جائے گا۔
کیونکہ بہت سارے لوگوں کو فلو کا ایکسپیرینس ہے، تو فلو جو ہے وہ عام طور پہ فال میں آتا ہے جب سردی شروع ہوتی ہے اور جب سپرنگ سے پہلے ختم ہو جاتا ہے جبکہ گرمی شروع ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ٹیمپریچر اوپر جائے گا اور یہ وائرس مر جائے گا اور اس کا افیکٹ ختم ہو جائے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس نے اتنا افیکٹ شو کیا ہے۔ ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ ٹیمپریچر آلریڈی بہت اوپر تھا وہاں پہ بھی وائرس پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سب لوگوں کا خیال ہے کہ جون جولائی میں کووڈ کا دور کافی زیادہ کم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ شاید فال میں یہ دوبارہ سے جیسے کہ ایپیڈیمک آتی ہے تو فلو بھی آتی ہے ہر سال، وہ دوبارہ آئے۔
کرونا وائرس کے پھیلتے ہی دنیا بھر کی معیشتوں کو ابتری کا سامنا ہے، یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ ملک کو جلد از جلد کھولنے کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آصف محمود کہتے ہیں کہ جن ریاستوں میں کرونا وائرس کی وبا زیادہ پھیلی ہے وہ شاید لاک ڈاؤن فوری ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر سکیں۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ آیا جو لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو کر صحت یاب ہو چکے ہیں وہ اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں؟ ڈاکٹر آصف محمود کہتے ہیں کہ اس کے لیے اینٹی باڈیز ٹیسٹ پر انحصار کیا جا رہا ہے۔
سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ پہ ہو رہا ہے، ایون صرف ڈائگنوسٹک ٹیسٹ پہ نہیں اینٹی باڈی ٹیسٹ پہ، جس میں کہ آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس کو کرونا وائرس میں بھی وہ انفیکٹڈ ہے وہ سمپٹومیٹک نہیں تھا، اس کو کوئی بخار نہیں تھا، کھانسی نہیں تھی، شارٹنس آف بریتھ نہیں تھی، لیکن وہ اس سے پازیٹیو ہو گیا، تو اب اس ٹیسٹ سے اینٹی باڈی ٹیسٹ سے پتا چلے گا کہ اس کی امیونٹی کتنی ہے اور اس اینٹی باڈی امیونٹی سے پتا لگائیں گے کہ آگے امیونٹی جنرل پاپولیشن میں کتنی جا رہی ہے اور وہ کس طرح سے امیون ہے، اور ہم یہ اگلے 6 مہینے سے 2 سال میں پتا چلے گا کہ کتنے لوگ اس کو بیسیکلی ٹالرنٹ کر پاتے ہیں، ہرڈ امیونٹی کتنی بڑھتی ہے اور کتنا سیف ہے لوگوں کا۔
مگر لوگوں کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی، یہ تبدیلی کس حد تک ہوگی اس کے بارے میں تو وقت کے ساتھ ہی کچھ پتا چلے گا۔
دنیا کی زندگی چینج ہو جائے گی، لوگوں کا لیونگ سٹائل چینج ہو جائے گا، لوگوں کا میل ملاپ چینج ہو جائے گا، ورکنگ کنڈیشن چینج ہو جائے گی، ٹریولنگ پلانز چینج ہو جائیں گے۔
کرونا وائرس کا خوف معاشرتی زندگی کو کیسے تبدیل کرتا ہے اس کا علم تو وبا کے تھمنے کے بعد ہی ہوگا، مگر سہم اور بے یقینی کی فضا جلد ختم ہوتی نظر نہیں آتی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے کرونا کے بارے میں ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.